हरे कृष्ण, दिस क्लास ऑन भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 32 गिवन एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ऑन 20 दिसंबर 2016 बाय मायसेल्फ प्रशांत मुकुंद दास.
नागरा यशमति नंदन ब्रजवर नागरा गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम. बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे. जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे. जय राधा गोविंद राधा. जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शना. जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा जय सुदर्शना. जय गौरानिताय गौरानिताय. जोर से गौरानिताय जय सभी बोलो जय गौरानिता गौरानिताय गौरानिताय. जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद. जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद. नित्य ओरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल. नित्य ओरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल. श्री राधा गोविंद भगवान की जय. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय. श्री पंचतत्व गौर निताय की जय. पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे. हरे कृष्णा. तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में. तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं. पिछली बार हमने 31 श्लोकों तक चर्चा किए थे. मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करेंगे। सभी लोग मंगलाचरण निकालें अपने पुस्तक से और साथ में दोहराएं। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वात्कान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापादान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 32वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। हम सब साथ में दोहराएंगे इस श्लोक को।
यच्छायाचोपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखीना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यच्छायाचोपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखीना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम्। यच्छायाचोपन्नम् स्वर्गद्वारम् अपावृतम् सुखीना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्।
इसका अनुवाद साथ में दोहराएंगे। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी है जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि जो क्षत्रिय है वो व्यक्ति अगर युद्ध का अवसर पाकर युद्ध करे तो अपने आप उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। पिछले श्लोकों में हमने 31वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी पिछले श्लोक में कि अर्जुन का स्वधर्म क्या है। हमने हमेशा ये कार्य करना है अपने जीवन में भगवद गीता से सीख करके कि जो हमारा स्वधर्म है उस पर हम कार्य करें। डॉक्टर का स्वधर्म क्या है? बिजली ठीक करना, पेशेंट ठीक करना। तो स्वधर्म है वो जो कार्य करता है वो कार्य सही से करना, ऑनेस्टी से करना, है ना। इलेक्ट्रिशियन का काम क्या है? कि वो बिजली ठीक करे, उसका काम पेशेंट ठीक करना नहीं है, वो बात अलग है। हिंदुस्तान में राय साहब बहुत होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन ही क्यों ना हो, लेकिन वो बीमारी के अंदर सलाह जरूर देता है कि ऐसा करो, हल्दी में, दूध में हल्दी डाल के पी लो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। पेट का दर्द है तो ऐसा करो, अजवाइन खा लो, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। तो ऐसे राय साहब बहुत है हिंदुस्तान में, लेकिन सही मायने में स्वधर्म जिसका है उसे ही उसको कार्य को करना चाहिए। तो हमने जाना अभी तक कि किस प्रकार से भगवान ने वर्ण के अनुसार व्यक्ति को, जाति के अनुसार नहीं, उसके गुण और कर्मों के अनुसार कहा ये तुम्हारा स्वधर्म है। तो आदमी को अपना स्वधर्म पहचानना चाहिए। जैसे बचपन में ही कुछ कुछ बच्चे आर्टिस्ट होते हैं, वो ड्राइंग बनाते हैं सुंदर सुंदर, तो माँ बाप को जानना चाहिए इसका स्वधर्म है आर्टिस्ट बनना। आप उसे इंजीनियर बनाएंगे तो मशीनों के ऊपर डिजाइन ये बनाता रहेगा, मशीन नहीं बनाएगा, और वो फिर फेलियर होगा अपनी लाइफ में। तो स्वधर्म को जानना चाहिए, इस व्यक्ति का इंटरेस्ट क्या है, स्वधर्म क्या है, इसकी नेचर क्या है। तो ऐसे ही किसी का नेचर ब्राह्मण का होता है, हो सकता है वो क्षत्रिय घर में उत्पन्न हुआ हो सकता है वो ब्राह्मण में उत्पन्न हुआ हो लेकिन उसमें वैश्य के गुणों, बिजनेस करना चाहता हो। तो ऐसे गुण और कर्मों के आधार पर भगवान ने चार वर्ण और चार आश्रम बनाए हैं। तो हमने पिछले धर्म में पढ़ा, पिछले श्लोकों में, कि स्वधर्म था अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है, शुरू से उनको धनुष चलाना बहुत अच्छा लगता है और उनका निशाना एकदम डायरेक्ट लगता है जाकर के। द्रोणाचार्य ने जब पूछा कि अर्जुन एक बात बताओ, तुमको पेड़ पर टंगे पक्षी में क्या नजर आता है, तो सभी लोगों ने अलग अलग चीजें बताई। किसी को पूरा पक्षी दिखता था, किसी को पूरा पेड़ दिखता था, किसी को डाल के ऊपर पक्षी की टांगे दिखती थी, लेकिन अर्जुन को क्या दिखता है, केवल पक्षी की आंख दिखती है। तो इसी तरह से जो फोकस्ड है अपनी लाइफ में उनको अपने स्वधर्म, अपने टारगेट से अलग नहीं होना चाहिए। तो अभी देखा जाए तो आत्मा का एक स्वधर्म है, जीवेरे स्वरूप होए नितेर कृष्ण दास, हमें भगवान का दास बनना है, आत्मा का ये स्वधर्म है। और इसीलिए सत्संग में आकर आनंद की अनुभूति होती है, मंदिर जाकर शांति की प्राप्ति है, कीर्तन में अपने आप हाथ से ताली बजने लग जाती है। ये क्या है? स्वधर्म है कि आत्मा परमात्मा की सेवा करके शांति और सुख का अनुभव करती है। ऐसे ही भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन ये जो तुम्हें मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। और अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अगर तुम स्वधर्म के अनुसार जो युद्ध प्राप्त हुआ है अगर उसे करते हो तो स्वधर्म के अनुसार क्या प्राप्त होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान ने इसमें कल्याण का वर्णन किया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपने स्वधर्म का पालन करे तो उसको कल्याण की प्राप्ति होती है। तो अब हम पढ़ते हैं कि भगवान ने किस तरह चार भागों में इस श्लोक को बांट करके अर्जुन को समझाना चाहा। भगवान कहते हैं यह छाया च औपन्नम, भगवान ने कहा यह छाया मतलब अपने आप भी प्राप्त हुआ। तो भगवान कह रहे हैं ये युद्ध तुमने प्रयास करके प्राप्त नहीं किया, ये तुम्हें अपने आप प्राप्त हुआ है। क्योंकि पांडव युद्ध रोकना चाहते थे शुरुआत से, उनका कभी भी इंटरेस्ट नहीं था कि हम युद्ध करें। ऐसे कई बार हमारे जीवन में भी होता है, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार कुछ ऐसे केस कर देते हैं हमारे ऊपर, या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिसे हम नहीं चाहते हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति होने पर वहां से भागना नहीं चाहिए, सयुद्ध करना चाहिए, है ना। तो भगवान कहते हैं पांडव तुम हमेशा युद्ध को रोकना चाहते थे। जब शकुनी जुए का प्रपोजल लेकर के, निमंत्रण लेकर के पांडवों के पास आए कि जुआ खेलो या युद्ध करो, तो चार काम हमें नहीं करने चाहिए, परिस्त्री संग नहीं करना चाहिए, मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो ये सदाचार है, धर्म के चार पांव हैं, जुआ नहीं खेलना, परिस्त्री संग नहीं करना, मांसाहार नहीं करना और चाय कॉफी आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। अगर ऐसे कार्य नहीं करते तो चार धर्म के पैर कायम रहते हैं। ये बात अर्जुन भी जानते थे, युधिष्ठिर भी जानते थे, फिर उन्होंने जुआ खेलना क्यों स्वीकार किया? उन्होंने कहा कि देखो युद्ध में हजारों लोग ऐसे ही मारे जाएंगे, तो इसलिए उनको बचाने के लिए अच्छा ये है, मुनासिब ये रहेगा कि हम क्या करें, जुआ खेल लें। उन्हें लगा कि जुआ खेल के हम हार जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था शकुनी जो है वो षड्यंत्र बहुत रच रहा है और एक ना एक समय हम जुआ हारने ही वाले हैं, और जुआ अगर हम हार गए तो क्या होगा, इनको संतुष्टि प्राप्त होगी, फिर ये आगे युद्ध नहीं करेंगे और कितने सारे लाखों लोगों की जान बच जाएगी, और हम कहेंगे जो बचा कुचा है हमें दे दो, हम उसी में संतुष्ट से अपना जीवन व्यतीत करें। जुए में उन्होंने शर्त रख दी, 12 वर्ष का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। अभी हो सकता था कि कहते नहीं नहीं युद्ध करो, हम नहीं लड़, हमें नहीं चाह, हम 12 साल जंगल में नहीं रहेंगे, लेकिन वो जानते थे युद्ध में हम शक्तिशाली हैं, कृष्ण हमारे साथ हैं। फिर भी उन्होंने युद्ध को टालना चाहा, क्या कर दिया, कहा कि हम अज्ञातवास में और वनवास में चले जाएंगे। और फिर बाद में जब अज्ञातवास के बाद वापिस आए, फिर भी भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए और कहा कि 5 पांडवों को 5 गांव दे दो और तुम आराम से सिंहासन पर राज्य करो। लेकिन क्या हुआ, हाँ जी, नहीं माने, और उन्होंने कहा कि नहीं, सुई की नोक के बगैर बराबर भी स्थान नहीं दूंगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। तो कई लोग जिद्दी होते हैं, जैसे आप लोगों से पिछली बार कहा था नोट्स कॉपी लेके आना है? तो दुर्योधन का चरित्र है कहने पर भी ना करना, ये दुर्योधन का चरित्र है। अर्जुन का चरित्र कैसा है, कहे बगैर ही समझ जाना इशारे से, है ना। अभी 2 साल हो गए हमें यहाँ पर कथा करते करते, अभी तो समझना चाहिए कि क्या चाहते हैं। जप माला लेना, जप करना, चार नियमों का पालन करना, नोट्स बनाना। आने वाले 5 साल बाद कोई पूछेगा आपने दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में क्या पढ़ा था, तो सब वाइप ऑफ हो जाएगा, हम इतना सारा याद नहीं रख सकते। याद है आप लोगों को पिछले श्लोक में क्या बताया था, फिर भी नहीं मानते हैं, तो इसे क्या कहेंगे, ये दुर्योधन है, आप नहीं है, आपके अंदर बैठा है दुर्योधन, आप तो अच्छे हैं। तो वो दुर्योधन को काटने का तरीका क्या है, भगवान के नामों का जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यहाँ पर बताते हैं भगवान के प्रयास के बाद भी युद्ध नहीं रुका, तो भगवान कह रहे हैं ये युद्ध स्वतः प्राप्त हुआ है। आगे कहते हैं अर्जुन ने पहले अध्याय के 43वें श्लोक में, पहले अध्याय के 43वें श्लोक में भगवान से क्या कहा, क्या कहा था, याद है किसी को, भगवद गीता के पहले अध्याय के 43, हम तो हर श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, बताइए क्या कहा था, यही नोट्स की आवश्यकता है, अभी पीछे जाएंगे सब देखेंगे फिर क्या कहा था। उन्होंने कहा कि अगर मैं इतने सारे लोगों को मारूंगा तो मुझे नर्क का द्वार मिलेगा, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, यहाँ उसका उत्तर दे रहे हैं दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में। क्वेश्चन पूछा था 1.43 में और उत्तर कहाँ मिल रहा है, 2.32 में। भगवान कह रहे हैं स्वर्ग द्वारम अपावृतम, तुम्हें नर्क नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। भगवान ने प्रश्न का उत्तर दिया है यहाँ पर, उन्होंने कहा था मुझे नर्क मिलेगा, भगवान ने कहा नहीं नर्क नहीं स्वर्ग मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हैं और कह रहे हैं स्वर्ग मिलेगा ही नहीं, कोई तुम्हें स्वर्ग जाने से रोक भी नहीं सकता। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति स्वर्ग तक जा रहा हो या किसी रास्ते पे जा रहा हो तो उनको रोक दिया जाता है, जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चतुर कुमारों को रोक दिया गया था जय विजय के द्वारा कि आप वैकुंठ धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। जब भगवान यहाँ कह रहे हैं स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, अपावृतम मतलब खुला हुआ है, तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं, बस लड़ाई करी मरे वीर गति को प्राप्त हुआ और सीधा स्वर्ग। हे भगवान ने उत्तर दिया नर्क की टेंशन तो छोड़ दो कि लोगों को मारने से तुम्हें पाप लगेगा, नहीं लगेगा, तुम सीधा स्वर्ग में जाओगे। तो भगवान यहां पर एक और चरित्र का चिंतन करते हैं और कहते हैं कि एक बार विश्वामित्र ऋषि थे। सुना है आपने नाम? कितने लोगों ने सुना है विश्वामित्र ऋषि का नाम? कौन थे बताइए, सुना है तो? कौन थे? हाँ जी, नहीं याद किसी को? हाँ, श्री राम जी के गुरु थे। यस, भगवान श्री राम के गुरु थे। तो ये गुरु बनने से पहले की प्रक्रिया क्या है कि जो विश्वामित्र थे वो एक बहुत बड़े राजा थे। विश्वामित्र राजा थे, बहुत बड़े क्षत्रिय राजा, ऋषि नहीं थे, क्षत्रिय राजा थे। एक बार वो अपने 100 पुत्रों के साथ में जंगल से गुजर रहे थे, और जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो उनको भूख प्यास लगी। आखेट करते हुए, जानवरों का शिकार करते हुए चलते चलते बहुत गहरे घने जंगल में निकल गए, और ऐसे जंगल में निकल गए जहां रास्ता नहीं मिल रहा। तो पहले जमाने में क्या होता था, वो किसी भी आश्रम में जाकर बोलते थे हमारे लिए प्रसाद बनाओ, और प्रसाद बनाने के बाद में उसको गहने, आभूषण, मुद्राएं दान में देते थे, जिससे ऋषि आश्रम के अंदर डोनेशन आता था, चैरिटी आती थी, और उसके बदले में वो उनको खूब सारा फल, दूध और प्रसाद ग्रहण करवाते थे। तो इस तरह से विश्वामित्र ऋषि ने कहा, देखो दूर एक आश्रम नजर आ रहा है, और उस आश्रम में छोटी सी कुटिया थी जिसमें 4 ही छोटे छोटे कमरे बने हुए थे उस कुटिया के अंदर। कहा कि देखो यहां लगता है कोई रहता है, जाओ पता करो कौन रहता है। तो सारे पुत्र साथ चल दिए उनके। उन्होंने कहा रुको, इतनी सारी सेना को देखकर कहीं ऋषि घबरा ना जाए और मना ना कर दे, मैं जाता हूं पहले देखता हूं क्या है, कौन है, उसके बाद तुम सब भी आना। वहां गए तो वहां देखा 2 ब्रह्मचारी कपड़े धो रहे थे, और कपड़े धोते हुए ब्रह्मचारियों से पूछा, यहां झरना बह रहा है, तुम कपड़े धो रहे हो, यहां सामने खाना भी पक रहा है, कौन रहता है, किसका आश्रम है? उन्होंने कहा ये वशिष्ठ ऋषि का आश्रम है। किसका आश्रम है? वशिष्ठ ऋषि। कहा वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, वाह, तो कहां है ऋषि? कह रहे बस अभी आ रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि आए तो उनको प्रणाम किया और कहा मैं भूखा हूं, मुझे प्रसाद चाहिए। तो वशिष्ठ ऋषि ने कहा चिंता क्यों करते, आइए महाराज, बन गया है, पा लीजिए, आप ही का घर है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी सेना है और 100 मेरे पुत्र हैं। उन्होंने कहा ठीक है, सबको ले आइए। कहां ले आऊं, बैठने की जगह नहीं है, 4 ही कमरों की छोटी सी कुटिया है, और एक अंगीठी पे एक छोटी सी कढ़ाई लगी हुई है, इसमें कितना खाना बनेगा? उन्होंने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, 100 पुत्र क्या, 1000 पुत्र ले आइए, हाँ सेना में 1000 सैनिक क्या, 1,00,000 सैनिक ले आइए, मैं सबके लिए खाना बनाऊंगा। कैसे बनाए? कह रहे वो मेरा काम है, आपका काम लाना है। कहा ठीक है, कहिए जाइए स्नान करिए और तुरंत आइए। वो गए, सभी पुत्रों को स्नान आदि करा करके लौटा रहे थे। इतने में यहां पर जब वो वापिस आए तो देखा एक सुंदर महल बन गया है, जिसमें सोने के आराम करने के, गोल्ड के, सोने के आराम करने के कई कमरे हैं, हजारों लाखों कमरे बन गए हैं, स्वर्ण सिंहासन बन गए हैं बैठने के लिए, स्वर्ण की थालियां बन गई हैं, और सब में खूब सारा 56 भोग लगा हुआ है। राजा हैरान, ऋषि है कि जादूगर है? अभी गया था तुरंत तो ये कह रहा था कि मेरे पास सिर्फ 4 ही कमरे हैं और 2 ब्रह्मचारी हैं, हम लोग कितना बनाएंगे, लेकिन आप चिंता मत करिए। कैसे बनाया? तो जब राजा ने पूछा विश्वामित्र जी ने, तो वशिष्ठ जी ने कहा मेरे पास एक कामधेनु गाय है, ये कामधेनु गाय हमारी हर इच्छा पूरी कर सकती है। तो हमारे जीवन में भी कामधेनु गाय होती है, कौन होती है? वैष्णव। वैष्णव और गुरु जो होते हैं, जो आपको बार बार कोई चीज का आदेश दे और आप पालन ना करें, तो इसका मतलब आप कामधेनु गाय को लात मार रहे हैं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। कामधेनु गाय बोलते हैं वंशा कल्पतरुभस्य कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हर एक वांछा को, हर इच्छा को पूरा करने वाला वैष्णव है। एक बार आप शरण में तो जाके देखिए, अगर आप आदेश को नहीं मानेंगे, वैष्णव की कृपा पता है कहाँ छुपी होती है? कहाँ? उसके पाँव में नहीं होती। कई लोग पाँव छूते बोले प्रभु जी हरे कृष्णा, पाँव में नहीं होती है। वैष्णव की कृपा उसकी वाणी में होती है। जब वो वाणी से आदेश दे और आप उसका पालन करेंगे, देखिए क्या रफ्तार आती है आपके जीवन में। परंतु नहीं पालन किया तो बस मालगाड़ी बनेगी, ढका ढक ढका ढक, धीरे धीरे। एक्सप्रेस ट्रेन बनाना चाहते हैं, वाणी को एज इट इज पालन करिए, देखिए क्या जीवन परिवर्तन होता है। हम तो अनुभव किया है, एक भक्त का बस एक सेवा कर दो, जो वो बोले तुरंत दूसरे दिन क्या जप होता है, क्या लाइफ हो जाती है, एकदम सारे ऑब्स्टेकल हट जाते हैं जीवन के। लेकिन मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, ये कामधेनु गाय है, जो इच्छा करते हैं वैसा पूरा करती है। मुझे देवी देवताओं को जब मैंने प्रसन्न किया तो उन्होंने मुझे कामधेनु गाय भेंट में दी, दान में दी। कहा ठीक है, प्रसाद पाया, आराम किया। जब चलने लगे तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा, अब मैं इस कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वशिष्ठ ऋषि बोले, तपस्या की मैंने, कामधेनु गाय ले जाएंगे फ्री में आप? क्यों? कहा मैं राजा हूँ और राजा पूरी पृथ्वी का होता है। ऐसे नहीं होता जैसे आज राजा होते हैं, झारखंड का राजा अलग, बिहार का राजा अलग, ऐसे नहीं होता। अभी वो उस समय पृथ्वी के राजा थे विश्वामित्र। कह रहे हैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं और मेरे एरिया में तुम गाय रखे हो, तो ये गाय किसकी हुई? मेरी हुई। वशिष्ठ ऋषि ने कहा, गौर फरमाइए, जरा ध्यान से देखिए। कहा क्या देखूं? कहा ये गाय अगर जमीन पर हो तो ये आपकी है और जमीन पे ना हो तो मेरी है। विश्वामित्र जी बोले, जमीन पे ना हो, गाय तो जमीन पे ही रहती है। जब उन्होंने कहा ध्यान से देखो, जब देखा तो चार फिट हवा में थी कामधेनु। कहा जमीन पे है? कहा नहीं। कहा फिर आपकी कैसे हुई? आप तो पृथ्वी के राजा हैं, आकाश के राजा नहीं, आकाश में है, वो तो हवा में है। फिर क्या करूं? फिर भी वो जबरदस्ती उस गाय को पकड़कर ले जाने लगे। जब वो ले जा रहे थे, वशिष्ठ जी ने कहा, देखिए मैं अभी भी आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर मैंने अपने किसी क्रोध का अगर मैंने आवेश में आकर आपको श्राप दिया तो आपको बहुत भुगतान भरना पड़ेगा। कहा जो कुछ भी हो जाए मैं गाय को नहीं छोड़ूंगा। तो एक गाय के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखकर विश्वामित्र ऋषि के द्वारा वशिष्ठ ऋषि से रहा नहीं गया। और हम लोग रोज देखते हैं कि गाय प्लास्टिक पॉलिथीन खाती है रोड पे, और बुरा बर्ताव हो रहा है। कितना बड़ा एक्सपोर्टर बन गया इंडिया गाय के मांस का, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही। उसी सरकार को वोट दे दे के सरकार बनाए जा रहे हर साल। सोचना चाहिए जरा गाय वध के ऊपर कितना बड़े वशिष्ठ ऋषि गुस्सा करने लगे। जिन संतों को गुस्सा नहीं करना चाहिए वो गुस्से में आ गए और उन्होंने श्राप दिया। और क्या श्राप दिया? तुम्हारे 100 के 100 पुत्र यहीं भस्म हो जाए। और विश्वामित्र ऋषि के 100 के 100 पुत्र तुरंत अग्नि बनकर भस्म, राख बन गए। अब विश्वामित्र ऋषि के साथ जब ऐसा हुआ उनको बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, आप बताओ जाते हो छोड़कर या तुम्हें भी भस्म करूं? तो ही विश्वामित्र ऋषि बोले, बस अब और ज्यादा नहीं, भाग गए। बोले इसका मतलब राज में बल नहीं है, बल किस में है? तपस्या में। कई लोग सोचते हैं व्रत रखेंगे, भूखे रहेंगे तो बल चला जाएगा, तो इसलिए खाते रहो। बोले व्रत हमारे लिए नहीं, हम तो जॉब करते हैं। जो व्यक्ति व्रत करेगा भगवान के लिए, वो व्यक्ति को बल प्राप्त होता है। ये बल भी एक कृपा है, देख ही लीजिए। तपस्वी में ज्यादा बल है कि वो राजा में जो रोज 3 टाइम भोजन करता था, 56 भोग खाता था, सैनिकों के बीच रहता था, उसमें बल नहीं था, तपस्वी में बल था। फिर भी वो नहीं माने, बोले अच्छा अब मैं यज्ञ से जीतूंगा। तो अब तपस्या भी करने गए तो अहंकार में आके कि मैं इसको नीचा दिखाऊंगा, और बैठ करके उन्होंने सारे देवी देवताओं के मंत्रों का जप शुरू कर दिया और कई वर्षों तक तपस्या करी। जब तपस्या करी, तपस्या करने से उन्हें सभी देवी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र प्रदान किए। शिव जी ने त्रिशूल प्रदान किया, इंद्र ने अपना वज्र प्रदान किया, और सारे उन्होंने शक्तिशाली शस्त्र लेकर के कहा, अब वशिष्ठ ऋषि को बताऊंगा। और आए वशिष्ठ ऋषि के पास, कहा वशिष्ठ ऋषि तैयार हो जाओ मेरे शस्त्रों को झेलने के लिए। तो वशिष्ठ ऋषि ने ऐसे देखा, कहा आप फिर आ गए, पिछली बार का भूल गए हो? कहा कि देखो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा था ताकि तुम आगे 100 पुत्र और उत्पन्न कर सकते हो। अगर तुम समाप्त हो गए तो प्रजा कैसे चलेगी, राज्य कैसे चलेगा, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। लगता है तुम माने नहीं। कहा नहीं मानूंगा, लड़ो मुझसे। तो वशिष्ठ ऋषि की एक छड़ी रखी थी, जिस छड़ी से वो चलते थे, जंगल में चलते हैं प्राय हाथ में छड़ी लेकर के। वशिष्ठ ऋषि की छड़ी जो थी, जब विश्वामित्र जी ने अपने इंद्र का वज्र प्रहार किया, वो उन्होंने सिर्फ छड़ी को देखा और छड़ी उड़ने लग गई। अभी ये यहाँ पर सारे शस्त्र अस्त्र चला रहे हैं और छड़ी सारे शस्त्र अस्त्र को फेल कर रही है। सबके हार जाने के बाद वो छड़ी पीछे पीछे पड़ गई विश्वामित्र जी के। वो आगे आगे और छड़ी पीछे पीछे, वो आगे आगे और छड़ी पीछे पीछे। अभी चलते जा रहे और गहरे जंगल में चले गए और जाकर के प्रणाम किया छड़ी को, कहा कि छड़ी रुक जाओ, मैं वशिष्ठ जी की शरण ग्रहण करता हूँ, अब मुझसे उनसे कोई द्वेष नहीं, मैं समझ गया हूँ वो सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं, शक्तिशाली हैं, और अब मैं अहंकार रहित होकर के भजन करूंगा। तो उनको लगा कि ठीक है, ऐसा बोल रहा है, वैष्णव प्राय कृपालु होते हैं, कितना भी दुष्ट व्यवहार करो भगवान और भगवान के भक्त उन्हें छोड़ देगा, ठीक है चल कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जा, छड़ी वापिस आ गई। बाद में एक बार एक राजा थे जिनका नाम था त्रिशंकु, आपने सुना होगा। त्रिशंकु राजा आए दौड़े दौड़े, कहा मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं सौ शरीर, जैसे यहां पर अभी श्लोक में अर्जुन को भगवान कह रहे हैं स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है जाओ। तो ऐसे ही त्रिशंकु जी आए और विश्वामित्र से कहा, वशिष्ठ जी से, कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा देखो स्वर्ग का जाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए कुछ कर्तव्य करने पड़ते हैं, ये नहीं है शराब पिएंगे और मर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, क्रिसमस पार्टी बनाएंगे, नए साल में खूब रात भर एंजॉय करेंगे, और फिर जब मरेंगे तो जाएंगे कहाँ, स्वर्ग। ऐसे एक व्यक्ति से मैंने पूछा था कि आपके यहाँ जिनकी डेथ हुई है वो तो बड़े ही खराब चरित्र के थे, हमेशा शराब पीते थे, परिस्त्री संग करते थे, मांसाहार करते थे, फिर आपने अखबार में क्यों निकलवाया स्वर्गवासी? तो बोले कि नर्गवासी लिखना अच्छा नहीं लगता। तो जैसे कर्म करोगे वैसा ही भोगना पड़ेगा, ये नहीं है कि हर आदमी स्वर्गवासी ही होता है, स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है, और वैकुंठ धाम जाना तो भूल ही जाओ, बिना तपस्या बिना जप आदि के कभी कोई नहीं पहुंच सकता। लिख देते हैं घर के आगे वैकुंठ गमन किए, वैकुंठ गमन नहीं कर सकता कोई, उसके लिए बड़ा भक्त होना पड़ता है व्यक्ति को, संप्रदाय गुरु को पालन करना पड़ता है, जप करना पड़ता है निरंतर, तपस्या व्रत आदि एकादशी के, तब जाके व्यक्ति का अंत काले चमामे विस्मरण मुक्त व कलेवरम, अंत नारायण स्मृति हो तो वैकुंठ धाम जाएगा। यही नहीं हर आदमी वैकुंठ जाए स्वर्ग जाए, जरूरी नहीं है, नर्क भी जाते हैं, 28 प्रकार के नर्क हैं और भरे पड़े हैं, यहीं से तो लोग जा रहे हैं, कहां से आएंगे, यहीं से जाते हैं पृथ्वी से, हमारे बीच में से जाते हैं लोग। तो आज जैसे जैसे कर्मों के अनुसार अलग अलग जेल बनी है, सीबीआई की जेल अलग, तिहाड़ जेल अलग, और काल कोठरी अलग, इस तरह से अलग अलग जेल है, ऐसे 28 प्रकार के नर्क है, जैसा करोगे उस स्पेशल नर्क में जाना पड़ता है। तो त्रिशंकु जी ने कहा मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, तो उन्होंने उनका ब्योरा देखा, कहा तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं है कि तुम स्वर्ग जाओ, हाँ ऐसे हैं कि जब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम्हारी आत्मा स्वर्ग चली जाएगी। कहा नहीं नहीं, ये शरीर वेस्ट नहीं होना चाहिए, पंच भौतिक शरीर को लेकर प्रवेश करूंगा स्वर्ग में। तो वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, ये इट इज नॉट पॉसिबल, जाओ तुम्हारे लिए नहीं बना है, अर्जुन जैसे श्रेष्ठ भक्त के लिए है, युधिष्ठिर जैसे श्रेष्ठ भक्त के लिए है कि वो स्व शरीर धाम चले जाते हैं, तुकाराम जी स्व शरीर धाम चले जाते हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन वो त्रिशंकु राजा बोला अच्छा इनके साथ कोई कॉम्पिटिटर भी तो होगा इनके बराबर का, तो पहुंच गए। कहां पहुंचे? एक ऐसे ऋषि के पास में जो बैठे कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, 60,000 वर्षों से, विश्वामित्र जी के पास पहुंचे। कहा विश्वामित्र जी मैं जाना चाहता हूं स्वर्ग। वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारे बस की बात नहीं। कहा बस अब नीचा दिखाने का मौका मिल गया, मतलब अभी तक मन में से बात गई नहीं थी। बोले मैं भेजूंगा स्वर्ग, चिंता क्यों करते हो? तो उन्होंने तुरंत कहा तैयार हो जाओ, और यज्ञ तपस्या शुरू करी और फिर स्वर्ग भेजने की तैयारी करी। इंद्र को जब मालूम पड़ा तो इंद्र ने कहा ऐसे कैसे, विश्वामित्र ऋषि ने अगर एक बार किसी को भेज दिया तो नीचे तो फैल जाएगा कि जाओ कुछ भी करो, विश्वामित्र ऋषि के यहाँ प्रणाम करो और ये बोल दो वशिष्ठ जी ने मना किया है, तो ये तो सब स्वर्ग में आ जाएंगे। तो इंद्र को बहुत क्रोध आया, इंद्र ने कहा कि ठीक है आने दो। अब त्रिशंकु जी नीचे से जा रहे हैं यज्ञ के धुएं के साथ साथ ऊपर, और बड़े खुश हैं और जा रहे हैं और जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, और आकाश को पूरा क्रॉस कर लिया है, और ऊपर पहले प्रथम लोग भूलोक को पार कर लिया, उसके बाद में पितृलोक को पार कर लिया, और स्वर्ग लोक में प्रवेश करने लगे। तो इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, ढम खींच के मारा तो सीधा गिरे नीचे की तरफ आकर, कहां वापस यज्ञ कुंड में। विश्वामित्र जी ने कहा अरे त्रिशंकु वापिस आ गए, पहुंचे नहीं स्वर्ग में। कहा कैसे पहुंचता वहां, इंद्र ने द्वार पर ही मुझे क्या किया, खींचकर वज्र प्रहार किया। विश्वामित्र ऋषि बोले ऐसे कैसे, मैं फिर भेजता हूं तुमको, और फिर उछड़ा दिए। और फिर इंद्र ने जाकर के जैसी देखा पितृलोक से आ रहा है, वो भारी खड़े हो गए गेट के बाहर कि आने नहीं दूंगा, फिर वज्र का प्रहार किया, ढम नीचे। तीन चार बार जब ये प्रक्रिया हुई आने जाने की लिफ्ट की, तो त्रिशंकु ने कहा हाथ जोड़ता मुझे नहीं जाना, तुम्हारे तुम्हारे क्रोध के चक्कर में मैं मारा जा रहा हूँ। वज्र का प्रहार तो मेरे मेरे पीठ पर होता है, मैं मारा जा रहा हूँ, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, छोड़ दो। कहा नहीं विश्वामित्र जी ने, मैं बांध के तुम्हें भेजूंगा, पर भेजूंगा तुमको स्वर्ग में। तो वो जिद पे अड़ गए। कहा अच्छा ठीक है। जब नहीं माने, इंद्र से बात करी, इंद्र को बुलाया, कहा तुम मुझसे द्वेष कर रहे हो। कहा नहीं, मैं आपसे द्वेष नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो प्रक्रिया है कि शरीर छोड़कर आत्मा स्वर्ग में आती है, फिर हम उसको यहाँ दिव्य शरीर या स्वर्ग का शरीर देते हैं। ये ऐसे नहीं कि कोई भी शरीर के साथ आ जाएगा, ये कोई सर्कस थोड़ी है कि टिकट दिया और आ गए अंदर। तो फिर जब इस तरह से हुआ तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है इंद्र, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तुम जानते नहीं हो, मैं एक स्वर्ग की एक रचना कर देता हूं। उन्होंने एक अलग से स्वर्ग बना दिया, उसे बोलते हैं त्रिशंकु स्वर्ग। त्रिशंकु स्वर्ग बना दिया और त्रिशंकु स्वर्ग बना के कहा कि जाओ त्रिशंकु, अब अपने स्वर्ग में रहो, तुम्हारे लिए मैंने एक स्पेशल स्वर्ग बनाया, ट्रू कॉपी फोटो कॉपी बना दिया है स्वर्ग का, त्रिशंकु स्वर्ग। अब ये जाने लगे। अब जब त्रिशंकु स्वर्ग में पहुंच गए तो क्या हुआ, बना तो दिया, उसको ऑर्बिट में रखेगा कौन? क्योंकि जितने ब्रह्मांड में जितने ग्रह घूम रहे हैं, किसकी इच्छा से घूम रहे हैं? भगवान की इच्छा से, भगवान के नेत्र से, खाली देखने मात्र से सब अपनी अपनी धुरी पे घूमते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं। और लोग सोचते हैं बृहस्पति का कर लूं, शुक्रवार देवी मैया का कर लूं, मंगलवार हनुमान जी का कर लूं, और है ना क्या करूं, मंगल ग्रह की शांति करा लूं। कुछ नहीं, सिर्फ क्या बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, सारे ग्रह अपने आप शांत हो जाएंगे। देखिए आप इस कथा से अनुभव करिए इस चीज को, प्रत्यक्ष है। त्रिशंकु स्वर्ग को बनाने के बाद में बना तो दिया, बनाना आसान है, संभाले कौन? वो तुरंत ऊपर से भूलोक की तरफ आने लगा। जैसे कई बार सुनते हैं अखबार में खबर आती है या न्यूज में कि एक मीटियोराइट आकर के टकराने वाला है और उसी में भयंकर टीवी चैनल कवरेज लेते हैं और अपना टीआरपी कमाते हैं, धन कमाते हैं। लेकिन असलियत में एक टुकड़ा टकराएगा तो इतना बड़ा होगा, अगर पूरा त्रिशंकु स्वर्ग आकर टकरा जाए तो क्या होगा, पूरा प्लैनेट, एक पूरा ग्रह। तो अभी तो सब घबरा गए और उन्होंने पूछा ये गिरेगा कहाँ? तो इंद्र ने कहा ये गिरेगा विश्वामित्र जी के सिर पे जाके। विश्वामित्र जी ने कहा मैं दब जाऊंगा। तो उन्होंने पहले किस किस की पूजा की थी? ब्रह्मा जी की, शिव जी की, इंद्र की, गणेश की, हनुमान की, सबको बुलाया। सब क्या बोले? ये भगवान का काम है। क्या बोले? शिव जी ने क्या कहा? भगवान का काम है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? भगवान का, मतलब हम लोग भगवान नहीं है। अब क्या करें, फंस गए। तो उन्होंने क्या बोला? हरी हरी। क्या बोला? आप भी बोलिए जोर से, आवाज नहीं आई, जोर से, हरी हरी। हाँ, हरी मतलब जो हर लेते हैं हमारी चिंताओं को, उनका नाम है हरी। भगवान हरने वाले हैं इसलिए उनका नाम है हरि। उन्होंने चिंता को हर लिया विश्वामित्र जी की और त्रिशंकु स्वर्ग को वहां पर जाकर स्थापित किया। कहा तुमने मेरी शरण ली है तो मैं अब तुम्हारे को क्या करूंगा, कृपा करूंगा। भगवान राम पांव में कांटे लग जाते हैं और सीता जी जब पांव के कांटे निकालती हैं तो कहते हैं क्यों निकालती हो सीते? तो सीता जी कहती है क्योंकि आपको स्वामी चुभेंगे। तो स्वामी कहते हैं जिसने मेरी शरण ग्रहण की है चाहे वो चुभे लेकिन मैं उसको निकालता नहीं हूं। तो जब भगवान कांटों को नहीं निकालते हैं तो कैसे विश्वामित्र ऋषि को निकाल देते? उन्होंने कहा तुमने मेरी शरण ग्रहण की है तो अब मैं तुम पर कृपा करूंगा। त्रिशंकु स्वर्ग को वहीं रोक दिया। शिवजी ब्रह्मा जी ने पुष्प वृष्टि करी और सभी लोगों ने जय जयकार करी, भगवान का नाम उच्चारण किया और साथ में उन्होंने कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूं क्योंकि तुमने अंत में इस बात को स्थापित किया कि मैं सभी देवी देवताओं से श्रेष्ठ हूं और मैं सिर्फ केवल एक ही हूं, भगवान केवल एक है, कौन? कृष्ण, और कोई नहीं है। ये तुमने स्थापित किया इसलिए अब मैं तुम्हारे को अपना गुरु बनाऊंगा सत्रेता युग के अंदर। और इसीलिए भगवान हरि राम बन के आए और विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। तो ये कथाएं हैं, इन कथाओं से हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण की शरण ही एकमात्र शरण लेने योग्य है। किसी की भी शरण लेंगे, कितना भी दिमाग लगाएंगे, स्ट्रेटजी लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, वो फेल ही होनी है क्योंकि हम लोग हैं च्युत और भगवान है अच्युत। भगवान का नाम है अच्युत, इसलिए जब कोई इस्कॉन केंद्रों में दीक्षा प्राप्त करते हैं तो उनका पहले कोई गोत्र होता है, ऋषि गोत्र, भारद्वाज गोत्र, शांडिल्य गोत्र, परंतु जब वो दीक्षा प्राप्त करते हैं गुरु गुरु के द्वारा परंपरे, तो सभी का गोत्र अच्युत गोत्र बन जाता है, एक ही गोत्र, कि अब हम कृष्ण के गोत्री हैं, अब हम किसी ऋषि के गोत्री नहीं है। तो ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। तो यहां पर अर्जुन को भगवान ने कहा स्वर्ग द्वारम अपावृतम, त्रिशंकु फंस गया था लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ युद्ध करो, तुम्हारे लिए द्वार खुला हुआ है, कोई रोक टोक नहीं है, तुम अटकोगे नहीं बीच में। और भगवान ने, अब यहां पर सोचने वाली बात है, एक तरफ भगवान कल्याणकारी उपदेश दे रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं स्वर्ग जाओ, लेकिन स्वर्ग जाकर को तो अर्जुन वापिस आना पड़ता है। तो यहां पर प्रश्न उठ सकता है, भगवान स्वर्ग जाने को क्यों कह रहे हैं, भगवान गोलोक धाम या वैकुंठ धाम अपावृतम क्यों नहीं कह रहे हैं? तो भगवान ये कहना चाहते हैं, भगवान ने कहा 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में, ते त्वं भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशन्ति। जो व्यक्ति कितने भी पुण्य करके अगर स्वर्ग पहुंच भी जाए, पुण्यों के समाप्त होने पर वापिस उसको पृथ्वी पे आना पड़ेगा। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कहा, आ ब्रह्मा भुवना लोकम पुनरावृति अर्जुन माम उपेत्य कौन्तुए पुनर्जन्म ना विद्यते। आ ब्रह्मा भुवनान लोकान, यहां से लेके ब्रह्मा के लोक तक जाओगे ना, 7 लोक पार करके, मेडिटेशन आजकल बड़ा चल रहा है, मेडिटेशन, हमने बाबा जी का शरण ग्रहण करी है, कोई भी बाबा जी हो, कैसा भी बाबा जी हो, गारंटी दे रहे हैं भगवान गीता में, आ ब्रह्मान भुवनान लोकान, 7 भुवन 14 भुवन में नीचे से ऊपर तक किसी की भी शरण ग्रहण कर लेना, लेकिन क्या होगा, पुनरावृति अर्जुन, वो दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन माम उपेत्य कौन्तु, मेरी शरण में आने के बाद में पुनर्जन्म ना विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होगा, तो सिर्फ शरण तो एक ही की लेनी पड़ेगी। तो भगवान ने यहां स्वर्ग का क्यों उत्तर दिया, उसका कारण है, भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जप नहीं करता, काम धाम भगवान का भजन नहीं करता है, लेकिन वो अपने स्वधर्म का पालन करता हुआ, जैसे कोई डॉक्टर है और वो डॉक्टर के प्रोफेशन में ऑनेस्ट है, उतना बिल बनता है उतना ही लेता है, इतना नहीं लेता कि सामने वाले का दिल निकल जाए बिल देख करके, ऐसा नहीं है। तो ऐसा अगर कोई है तो स्वधर्म का अगर पालन करते हो, अपने शरीर का त्याग करता है, ऑनेस्ट है, तो उस डॉक्टर को भगवान समान माना जाएगा और वो फिर शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएगा, स्वर्ग, ऑटोमेटिकली, बिकॉज ही इज हेल्पिंग, उसने अपने उद्देश्य को ऑनेस्टली दिया, उसने किडनी बेच करके अपने फ्लैट नहीं बनाए द्वारका में, तो इस तरह से जो है वो सही मायने में पहुंच पाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो व्यक्ति पहुंचा है, लेकिन अगर वो डॉक्टर या फिर वो एक मेडिकल का स्टाफ अपने स्वधर्म का पालन करते करते भी अगर जप करने लग जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अगर वो जप करेगा 16 माला का, तो क्या होगा अर्जुन, बिना जप किए स्वर्ग पहुंच गया, तो जप करके कहां पहुंचेगा, सीधा वैकुंठ धाम में जाएगा, पुनरावृत्ति अर्जुन, और दोबारा उसको पुनर्जन्म ना विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। तो ये समझने वाली बात है, भगवान ने कहा अगर अर्जुन तुम मेरे प्रति शरणागत भी नहीं होते हो तो भी स्वर्ग तो पहुंच ही जाओगे, मिनिमम स्टैंडर्ड है स्वर्ग, और अगर जप करके पहुंचे मेरी शरण में आ गए तो वैकुंठ धाम, कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए कोई व्यक्ति जो जप करता है ना, उसको तो ये चिंता ही नहीं करनी चाहिए, मेरा मोक्ष कैसे होगा, मुझे स्वर्ग कैसे मिलेगा, वो सब तो पहले दिन ही प्राप्त हो गया जब आपने जप माला को उठा लिया था। यहां पर और हम समझते हैं, भगवान ने कहा युद्धम ईदृशम, भगवान ने श्लोक के अंत में क्या कहा, युद्धम ईदृशम, ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है कि तुमको युद्ध प्राप्त हो गया, अपने आप से प्राप्त हुआ है, तुमने इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी है, क्योंकि भगवद गीता के पहले अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान कोई अपने स्वजनों को मार के कैसे भाग्यशाली होगा, अपने घर के लोगों को मार के कोई भाग्यशाली होता है क्या? तो भगवान कह रहे हैं कि चिंता मत करो, तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि ये युद्ध भाग्यशाली लोगों को, युद्धम ईदृशम, भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। भगवान ने हर प्रश्न का उत्तर दिया है अर्जुन के, युद्धम ईदृशम। तो क्षत्रियों का धर्म क्या है कि उन्हें लड़ने का मौका मिले। जैसे ब्राह्मण को, जिसका गुण ब्राह्मण का है, उसे भगवान की कथा कहने और सुनने में बड़ा आनंद का अनुभव होता है, जो ब्राह्मण गुणों का हो, कर्मों का हो, नाम का नहीं। तो ऐसे ही जो क्षत्रिय गुणों का होगा ना, उसको लड़ाई झगड़े में बड़ा मजा आएगा। जहां थोड़ा बहुत भी लड़ाई झगड़ा होगा ना पड़ोसियों का, वो कूद के घर के बाहर पहुंचे, कहां बीच बचाव कराने लगेगा। चाहे नाम के पीछे वो गुप्ता लिखता हो, बनिया हो, वैश्य हो, लेकिन वो व्यक्ति को लड़ाई झगड़े में मजा आता है तो वो क्षत्रिय है। तो उन्होंने कहा, तुम्हें अपने आप युद्ध प्राप्त हुआ है, ये संरचना है, तुम नहीं चाहते थे फिर भी युद्ध मिला, तो ये भाग्य से प्राप्त हुआ है और ये तुम्हें सुख की अनुभूति देगा। सुखम, भगवान ने कहा ना सुखी ना क्षत्रिय, एक क्षत्रिय के लिए बड़ी सुख की अनुभूति होती है, तो तुम्हें सुख मिल रहा है। और भगवान ने कहा कि देखो, एक क्षत्रिय के लिए इससे अच्छा क्या होगा कि वो या तो वीर गति को प्राप्त हो, लड़ते लड़ते मर जाए, और अगर वो जीत जाए तो वीरता के कारण उसे सिंहासन प्राप्त होगा। तो दोनों चीजों में बेनिफिट है। अगर देखो भक्ति किए बगैर मर गए तो स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग चले जाओगे, और अगर भक्ति करके मर गए तो वैकुंठ धाम को जाओगे और वीर गति कहलाओगे, और अगर भक्ति करते करते और लड़ते लड़ते जीत गए तो सिंहासन मिलेगा, राजा बन जाओगे। तीनों पॉजिटिव पॉइंट्स भगवान ने उनको दिखाए कि तीन तरीके से तुम्हारी विजय निश्चित है, तो इसलिए डरो मत और क्या करो, युद्ध करो। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि बेटर देन डाइंग इन लाइंग, बेटर देन डाइंग इन लाइंग, लेटे लेटे मरने से अच्छा है कि हम अपने स्वधर्म पे कार्य करते करते मरे। अगर कोई ब्राह्मण है तो प्रचार करते करते शरीर छोड़े, भगवान की कथा करते करते पर शरीर छोड़े। क्षत्रिय है, देश की रक्षा, राज्य की रक्षा करते हुए शरीर छोड़े। कोई वैश्य है तो वो गौ रक्षा और कृषि रक्षा करते हुए अपने शरीर को छोड़े, और कोई शूद्र है तो इन तीनों वर्णों की सेवा करते हुए अपने शरीर को छोड़े। तो सही मायने में उसने अपने स्वधर्म का पालन किया है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपनी बंगाली एक पुस्तक में लिखते हैं, अन्या से पाई अचे स्वर्ग द्वार खोला, से युद्ध करियता नाही कर अवहेला, भाग्यवान वीर से हे न युद्ध पाए, युद्ध करी यज्ञ फल क्षत्रिय लभाए। भाग्यवान वीर से ही हे न युद्ध पाए, वो भाग्यवान क्षत्रिय होता है जिसे युद्ध अपने आप प्राप्त होता है। हाँ? और युद्ध करी यज्ञ फल, एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ब्राह्मण के लिए जैसे यज्ञ करना है, वैसे एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करने के बराबर है। तो हम जो आत्मा है, शरीर नहीं है, क्योंकि जो ये आत्म तत्व का ज्ञान है ये वर्ण से भी ऊपर का ज्ञान है। आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। आत्मा का क्या है, आत्मा का एक ही कर्तव्य है, परमात्मा की सेवा करना। जैसे इस हाथ का एक ही कर्तव्य है, इस शरीर की सेवा करना। तो आत्मा जब तक इस शरीर में है, इसको ठाकुर जी की सेवा में लगा दो, ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। और भगवान की सेवा प्रारंभ कहां से होती है, कहां से शुरू होती है भगवान की सेवा? कोई बोले कि हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, हमारे घर भी लड्डू गोपाल है, कहां से शुरू होती है? जब से नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्ता पिता नियमते स्मरणे न कालम, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि द्वैदम दृशी महि जानी नानुरागम। भगवान कहते हैं मैंने अपने नामों में सारी शक्ति डाल दी है, अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम का जप करेगा तो अपनी आत्मा के स्वधर्म का कार्य कर रहा है, और अगर वो जप नहीं कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा का भोजन नहीं दे रहा है। आपने घर में बच्चे को भूखा बंद कर दो और चार दिन खाना ना दो और चले जाओ घूमने फिरने, तो पड़ोसी कहेंगे आप अपने बच्चे का आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उसको भोजन नहीं दे रहे हैं। ऐसी आत्मा का भोजन है भगवान का नाम। तो निरंतर भगवान का नाम लीजिए, आत्मा को पुष्ट करिए, स्वधर्म पर विचार करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।